दोस्तों स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म के अंदर प्रवीण धनखड़ ब्लॉग्स के अंदर। आज हमारे साथ रोहतक की ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी हमारे साथ हैं डॉक्टर राज आलमपुर। सर आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार हमारे सभी साथियों को।
और ग्रेट मोमेंट ये है कि राज सर आज हमारे साथ हैं इस इवनिंग में और हमें ये मौका मिला कि हम सर से डिस्कस करें। और सर अपनी जो साइकोलॉजी की जो एक्सपर्टीज़ हैं, जो प्रैक्टिस हैं, उनके बारे में हम जानें और आप तक भी वो मैसेज हम पहुंचाएं। तो राज सर पहले ये बताइए कि साइकोलॉजी एग्जैक्टली क्या होती है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से?
बेसिकली साइकोलॉजी जब से पिछले 100 साल से ज़्यादा हमारी इस मार्केट में ये सब चीज़ें सुनने को मिली हैं, बट साइकोलॉजी इससे भी पीछे है। कभी साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल बोल देते हैं, स्टडी ऑफ माइंड बोल देते हैं, बट एग्जैक्ट जो डेफिनेशन है वो है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। ये सबसे लेटेस्ट है कि हम सोचते क्या हैं यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि हम एक्ट क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे ब्रेन के सिस्टम, माइंड का सिस्टम और हमारे बिहेवियर का सिस्टम है, इसको हम साइकोलॉजी में काउंट करते हैं।
तो जैसे मैं आपको जानता हूँ राज सर, आपने बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर अपनी काउंसलिंग दी है, तो ज़्यादातर आपने देखा हो गांव का बच्चा होता है स्कूल के अंदर ज़्यादातर स्टफ होता है, तो आप कैसे कंपैरिजन करेंगे पेरेंटिंग जो सिटी की पेरेंटिंग है और गांव की पेरेंटिंग है और बच्चों की जो साइकोलॉजी है स्टडी को लेकर और करियर को लेकर?
मोटे तौर पर हर एक चीज़ के पॉजिटिव नेगेटिव फैक्टर तो हमेशा देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप शहर को लेकर चलेंगे तो एक अवेयरनेस लेवल बहुत अच्छा है कि उनके बच्चे हैं वो किसी खास करियर में जा रहे हैं, वो थोड़े बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, थोड़ा बहुत कुछ टीनेज की साइकोलॉजी उन्हें प्रभावित कर रही है। तो वो शहर के पेरेंट्स जो पढ़े लिखे हैं उनको एग्जैक्टली आइडिया होता है कि मेंटल हेल्थ आल्सो मैटर्स। बट यदि हम गांव की तरफ चले जाएं तो स्ट्रेस लेना, या मैं मेरे समय को याद कर लूं कि उस समय में डिप्रेशन जैसी फीलिंग होना, होपलेस की फीलिंग आना, कई बार करियर में वो हाइट्स ना मिलना, किसी छोटे से एग्जाम में फेल होने के बाद एक अनसर्टेनिटी महसूस होना, इन सब चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे होती सभी जगह है बट उतनी अवेयरनेस लेवल नहीं होता। बजाय जहाँ पॉजिटिव चीज़ें थी शहर में, गांव में भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल आजकल ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि सोशल इंसान का इंटरेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आज आप मान के चलें कि मेट्रो सिटीज़ में दोनों पेरेंट्स काम करते हैं और बच्चे को उतना समय मिलता नहीं, तो इस चक्कर में बच्चे की अवेयरनेस लेवल तो हाई है पेरेंट्स में बट उसको वो माहौल नहीं दे पाते। बजाय इसके गांव में ये सब चीज़ें हमें एक अच्छे स्तर पे मिल जाती हैं, उसके दोस्त मिल जाते हैं, आसपास घूमना फिरना मिल जाता है। आज भी गांव में ऐसी बात नहीं है, लोग आपस में बैठते हैं, बात करते हैं, तो वो चीज़ बच्चे को थोड़ी सी एक सोशल एस्पेक्ट से यदि बात करें, सोशल साइकोलॉजी उसकी थोड़ी सी और अच्छी बनती है।
तो इसमें आप कहना चाहते हैं राज सर, जैसे कि हमारा पुराना टाइम था तो बच्चे अपने दादा दादी के साथ खेलते थे, उनके साथ काउंसलिंग करते थे, या हमारे जो परिवार के मेंबर होते थे वो जो गांव में बैठ जाते ताश वाश खेलते थे तो उनके साथ वो अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते थे और कहीं ना कहीं रिजोल्व हो जाते थे, मैं समझ पा रहा हूँ।
बिल्कुल।
तो मुझे ये बताइए सर, जो स्टूडेंट लाइफ में जो बच्चे हैं या मैरिड लाइफ के अंदर जो कपल्स हैं, किस किस तरह की साइकोलॉजी प्रॉब्लम होती है? तो पहले आप स्टूडेंट लाइफ के बारे में।
हाँ, एक्चुअल में स्टूडेंट लाइफ एक लंबी यात्रा है जिसमें बच्चे का चाइल्डहुड भी आता है, उसके बाद वो अपने एडल्टहुड एडोलसेंट, और बल्कि कई बार तो बच्चे पढ़ते पढ़ते उनकी शादियाँ भी होती हैं, तो ये काफ़ी लंबा है। इसमें मोटे तौर पे दो बात समझें कि जो टीनेज के बच्चे हैं उनकी साइकोलॉजी काफ़ी इम्पेक्ट करती है उनकी फर्दर करियर पे। एग्जांपल के लिए जब बच्चे की उम्र 12-13 साल होती है, उसी समय में बच्चे में हार्मोनल बायोलॉजिकल चेंजेस तो आते ही हैं, साथ में उसमें सेल्फ स्टीम को स्टेब्लिश करने की साइकोलॉजी भी आती है। थोड़ा आसान शब्दों में समझें तो इस उम्र में बच्चे को अपने आप को साबित करने के लिए एक तूफानी उम्र से गुजरना पड़ता है। इसे ठीक से समझा जाए तो इस उम्र में बच्चा अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा समझदार मानने लग जाता है, जो इतना होता नहीं, क्योंकि लर्निंग इज़ ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, सब जगह सीखना पड़ेगा। तो इस समय में वो बच्चा ये तो समझता ही है कि मैं समझदार हूँ। कई बार आप पाएंगे कि इस उम्र के बच्चे अपने माँ बाप से कोई बात नहीं करते, अपने टीचर के साथ में कनेक्ट नहीं है, इस सोसाइटी की बातों को लेके बोलते हैं, इस समाज में मुझे कुछ नहीं दिया। बजाय इससे दूसरा पहलू देखेंगे तो इसी उम्र के बच्चे जो 13 साल से 12 साल से शुरू होकर 20 साल तक जाते हैं, ये अपने दोस्तों के साथ काफ़ी पीयर प्रेशर फील करते हैं और उनकी बातें ज़्यादा भी मानते हैं। इसके पीछे मोटी वजह है कि इस उम्र में मैंने बताया कि बच्चे को स्टेबिलिटी चाहिए, उसको अपने आप को सेल्फ स्टीम को स्टेब्लिश करने के लिए वो माहौल चाहिए। अब पेरेंट्स टीचर्स वो माहौल उसको सिखाने के बार बार उसे धमकाने में उसे बार बार कोई ज्ञान देने की कोशिश करते रहते हैं, बजाय इसकी वो चाह रहा है कि लोग उसको समझें, उसकी बातों को समझें और उसके दोस्त वहाँ मिल जाते हैं।
सही कहा रहा सर आपने। तो मुझे बताइए सर, साइकोलॉजी की जो काउंसलिंग है वो आप कैसे करते हैं?
बेसिकली काउंसलिंग के बारे में एक कॉमन बात है कि लोगों को कई बार तो ये नहीं पता होता कि काउंसलिंग क्या चीज़ है और इसको समझना है।
मुझे
तो
भी नहीं पता था बाय द वे क्या काउंसलिंग है।
बस ये वर्ड इतना अच्छे से है, जिसको हम थोड़ा इसी को समझ जाएं तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो सकती है। तो बेसिकली काउंसलिंग क्या नहीं है ये पकड़ में आ गया तो काउंसलिंग क्या है और आसान हो जाएगा। काउंसलिंग सबसे पहले जो बातचीत नहीं, ये सिर्फ एक इधर इंसान बैठा है जो ज्ञान देने वाला है, एक सामने बैठा है ज्ञान लेने वाला है, ऐसा कोई भी चीज़ ये नहीं होती। क्योंकि यदि बात करने से चीज़ें ठीक हो जाती तो अभी तक आज तक क्या आप किसी से बात करते नहीं हैं? तो काउंसलिंग एक्चुअल में कुछ और है जिसको हम थोड़ा अच्छे से समझें। इट इज़ ए प्रोफेशनल सेटिंग जहाँ पे दो तीन बातों का खास ध्यान रखा जाएगा कि प्रोफेशनल सेटिंग में एक एक्सपर्ट होता है और दूसरा काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग हु इज सफरिंग फ्रॉम द इश्यूज और जो किसी अपनी प्रॉब्लम के बारे में बात करने आए, ये दोनों लोग एक प्रोफेशनल सेटिंग में बैठ के गोल डिसाइड करते हैं, जिसमें मोटे तौर पे तीन बातें हम ध्यान रखते हैं। फर्स्ट इज प्राइवेसी, किसी भी हाल में इस काउंसलिंग रूम से बाहर निकलते ही किसी भी रूप में वो बात डिस्क्लोज नहीं करनी है, ये एथिक्स ऑफ काउंसलिंग है, यानी ये काम करना ही है। सेकंड, इसी बातचीत में आपको नॉन जजमेंटल रहना पड़ता है। काउंसलर इज वेरी वेरी हाईली नॉन जजमेंटल पर्सन, वो हो सकता है पर्सनल उसके बिलीफ है कि किसी को यार शराब नहीं पीनी चाहिए, बट यदि कोई केस उसके पास रिलेटेड आ गया तो वो कभी ये नहीं कहता कि शराब पीना गलत बात, क्योंकि वो कोई इस प्रकार की एडवाइस नहीं देता। जो तीसरा पॉइंट है, काउंसलिंग कोई भी एडवाइजेबल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कंसल्टेंट नहीं है, ये आपको समझने की कोशिश करते हैं, आपके प्रति एम्पैथी रखते हैं और दे आर वेरी गुड लिसनर। आप जानते हैं 90% समस्याएं सुनने से भी कई बार ठीक होती, तो ये एक्चुअल में काउंसलिंग है।
अच्छा, बिल्कुल आपने सही कहा। तो इसके बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं काउंसलिंग की, यदि हम बात करें तो ये बहुत लंबा डिस्कशन है, इसके बारे में हम कभी स्पेशल ब्लॉग बनाएंगे और आप लोगों तक हम शेयर करेंगे। सर मुझे ये बताइए कि आप काउंसलिंग, जैसे मैं जानता हूँ आप स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, कंपनीज में आप जा रहे हैं, तो आप कब से इस फील्ड के अंदर हैं?
बेसिकली मेरी पढ़ाई जब से चल रही है तो मैंने सोचा कि साइकोलॉजी लाइन में आने का मोटिव वजह मेरी सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, बल्कि मैंने सोचा कि कुछ प्रॉब्लम सोल्व हो सकती हैं यदि इस टॉपिक, वैसे तो हर एक सब्जेक्ट से होती हैं बट मुझे थोड़ा नज़दीक लगा था। मैं साइंस बैकग्राउंड से था, नॉन मेडिकल से था, बीएससी सेकंड ईयर तक मैं साइंस के साथ रहा, फिर मैंने सोचा कि शायद कुछ प्रैक्टिकल हो सकता है। तो पिछले 4 से 5 साल मुझे भारत के करीब करीब 15 राज्यों में जाने का अवसर मुझे मिला है और 5 साल में देखा जाए तो लगभग 2 लाख के आसपास लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, जिसमें मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी और बेसिकली कुछ लोगों को ज़रूर इससे फ़ायदा हुआ।
आप अपनी फील्ड में अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं?
इसमें देखा जाए तो काउंसलिंग जो है या साइकोलॉजी जो है, ये इसमें बहुत सारे सिगमंड फ्राइड हुए, एरन बेक हुए, कार्ल मार्क्स हुए, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, बट जिस हिसाब से आप पूछ रहे हैं कि हम किसको रोल मॉडल माने, तो डॉक्टर कलाम को लेके मेरे मन में होता है कि काम करने के स्टाइल में मैं उनको रोल मॉडल मानता हूँ। और जो साइकोलॉजी के फील्ड है इसमें बहुत सारे अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, मतलब अभी बंडूरा जो है अभी पिछले साल, अभी शायद इसी साल वो एक्सपायर हुए हैं, उन्होंने भी बिहेवियर को लेके काफ़ी बेहतरीन बात बताई है, जो शायद किताबों में जिसे हमने पढ़ा और वो यूट्यूब पे उनका एक चैनल रहा था अल्बर्ट बंडूरा, तो मैंने देखा है काफ़ी सारी नज़दीकियाँ हैं। और इसके अलावा पावलोव का जो कॉन्सेप्ट है उससे भी बहुत सारी साइकोलॉजी, बहुत एक ड्रास्टिक चेंज आ गया था जिसमें कि बिहेवियर को लेकर बातचीत करने लगे।
तो सर मुझे आप ये बताइए कि आपका क्लिनिक कहाँ है रोहतक में, लोग आपसे संपर्क करना चाहें तो?
हाँ, मैं रोहतक में सोनीपत रोड पे जांगला डायग्नोस्टिक सेंटर, जो लिटिल पैंथर स्कूल है या फॉक्स वैगन का शोरूम है, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे मेन रोड पे ही मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और यहाँ पे हमारे बिहेवियर से या साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से या रिलेशनशिप से या स्टूडेंट लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें की प्रॉब्लम पे हम उनकी हेल्प करते हैं।
राइट सर, तो जैसे अभी क्रिसमस गई है, सो न्यू ईयर आ रहा है, कुछ मैसेज आप हमारे व्यूवर्स को, दर्शकों को, साथियों को देना चाहेंगे?
हाँ, काफ़ी एक इंसान को बहाने चाहिए होते हैं कि जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि हमें कोई अवसर मिल जाए, उस अवसर के ऊपर हम कोई बदलाव कर सकते हैं। शायद ये 2022 है, ये दिसंबर है, और मैं तो मानता हूँ कि जनवरी सपने दिखाता है और दिसंबर आपको आईना दिखाता है। तो ये आईना देखना है पहले तो कि हम कहाँ तक हैं, एनालिसिस करना पड़ेगा। शहर में कहीं खड़े हैं, कोई अच्छे रास्ते पे तभी आपको पहुँचा सकता है। जिसको आप ये बता पाएं कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ खड़े हैं, तो ही तो वो आपको किधर मुड़ना है। सबसे पहले अपने आप से बात करें। दूसरी बात, हमारे कॉन्शियस ब्रेन के चक्कर में सिर्फ ना उलझे, यानी सिर्फ सपने ना बनाएं, बल्कि अंदर से आपको आवाज़ आ रही है कि बेटे सपने बनाने से कुछ नहीं होगा, तेरे को कुछ करना भी। तो छोटे गोल बनाए जाएं लेकिन पूरे करें। इससे मोटा फायदा ये होगा कि आप अपने आप एक झूठी कमिटमेंट के साथ जीवन नहीं जिएंगे। जैसे शायद हमारी ये बातचीत सुन के कोई आदमी मोटिवेट हो जाए और वो कहे मैं तो एक दिन बहुत बड़ा काम करूँगा, तो उसे नीड ऑफ मोटिवेशन, यानी जो हमारे मैस्लो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, उन्होंने बताया है कि आप अपने आप के साथ इस तरीके से आगे बढ़ाएं अपने आप को कि पहले हमारी बेसिक नीड होती है कि खाना पीने को पूर्ति करें, फिर अपनी सिक्योरिटी को लेके काम करें, फिर अपने रिलेशन को लेके काम करें, फिर आप इस दुनिया को क्या लौटा सकते हैं उसके लिए काम करें, और फाइनल ट्रूथ इज कि हम अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ें। तो मैं यही मैसेज आप सभी को दूंगा कि एक अच्छा अवसर है, अपने आप को एनालिसिस करें और अपने आप झूठ न बोल के अपने सपने पूरे करें। बड़ी बातें जरूर करें लेकिन बड़ी बातें करते करते अपने आप से चिटिंग ना करें, ताकि आप एक अपने सेल्फ के साथ हमेशा अपने आप को कभी फूटा हुआ बम महसूस ना करें कि किसी दिन मौका मिले तो नेगेटिविटी को हम फेंक दें।
जी जी राज सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए दुनिया के साथ हम चीट कर सकते हैं लेकिन सेल्फ के साथ हम चीट नहीं कर सकते। तो सेल्फ रिस्पेक्ट, देखो मैं भी जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो एक बात मैं राज सर कहता हूँ, मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जैसे हम पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं तो मैं एक बात मैं बच्चों को सिखाता हूँ, डोंट डिसरिस्पेक्ट योरसेल्फ। मैंने देखा है, जैसे मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 22 इयर्स का, मैंने प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स, स्टूडेंट, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मैंने बच्चों को पढ़ाया, टीचर्स को पढ़ाया है, तो मैंने देखा मोस्टली 90% लोग अपने ही थॉट के डिसरिस्पेक्ट करते हैं। सो गाइस, हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए अपने थॉट्स का, अपने कंटेंट का, अपने नॉलेज का, उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। और माय डियर, आप लोग भी जैसे अभी कमेंट्स आ रही हैं कि राज सर के हम कंटिन्यू एपिसोड चाहेंगे कि वो छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर हमारी काउंसलिंग करते रहें, तो सर हमारे व्यूअर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि जरूर कोई ना कोई शॉर्ट एपिसोड्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आप डालें।
बिल्कुल, हम उपलब्ध हैं हर एक रूप में आपकी। यदि हमारे आज इंटरनेट है, जमाना है, दुनिया के किसी कोने में चंद सेकेंडों में हम पहुँच सकते हैं। वो ज़माना चला गया कि इंग्लिश सीखने के लिए कहीं कहीं हमें एक ही टीचर मिलता था। आज आप जैसे लोग हैं जो एक सेकंड के अंदर दुनिया के किसी भी बच्चे तक आप पहुंच सकते हैं। तो इस इंटरनेट का फ़ायदा, जितना टेक्नोलॉजी के फ़ायदे हमेशा ही रहे हैं, इसका फ़ायदा हमें मिलता है, तो हम ज़्यादातर बच्चों तक पहुंचेंगे। और मुझे भी खुशी होगी कि यदि हमारी 5-10-20 मिनट की बात करने से किसी के जीवन में चेंज आए तो शायद ये मेरे लिए सौभाग्य।
थैंक यू सो मच राज सर, आपने अपना टाइम दिया। एंड थैंक यू सो मच गाइस, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब। राज सर ने प्रॉमिस किया है हम आपके साथ इनके नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट ब्लॉग्स के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। टेक केयर एंड बाय।